पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र से दूर जाने का फैसला करती है। इस अध्याय में रूही एक अनाथ आश्रम जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे बंद किया जा रहा है। वो अधिकारियों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते, और उसे पता चलता है कि रुद्र इसके पीछे है। दिशा के साथ रूही उस व्यक्ति से मिलने जाती है जिसने अनाथ आश्रम खरीदा है। सरोजिनी उन दोनों को धमकी देती है। फार्म हाउस में दिशा को विचलित किया जाता है ताकि रूही अकेले उस व्यक्ति से मिल सके। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 79। अब आगे रूही जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि पूरा रूम अंधेरे से भरा हुआ है और उसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। उस हल्की सी रोशनी में उसे एक सख्त पीठ करके खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे देख वे समझ जाती है कि ये वही सख्त है जिसने अनाथ आश्रम को खरीदा है, और यही इंसान उस अनाथ आश्रम का मालिक है। जिसे देख वे थोड़ा और आगे बढ़ उस सख्त की पीठ को देखते हुए बोली, देखिए मुझे पता चला है कि आपने ही हमारे अनाथ आश्रम को खरीदा है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भले ही आपने उस अनाथ आश्रम को खरीद लिया हो, मगर आप इस तरह हमें वहां से बाहर नहीं निकाल सकते। हम वहां पर सालों से रहते आए हैं, और आप तो अचानक हमें इस तरह वहां से जाने के लिए नहीं कह सकते। वहां पर छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े सभी रहते हैं। आप ही सोचिए कि वे सब कहाँ जाएंगे। इसलिए प्लीज आप हमें वहां पर रहने दीजिए। अगर वहां पर रहने देने की आपकी कोई कंडीशन है तो वे भी हमें मंजूर है, लेकिन प्लीज आप हमें इस तरह वहां से मत निकालिए। इतना बोल रूही चुप हो जाती है। वहीं वे सख्त जब रूही की बात सुनता है तो उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है, और वे रूही की तरफ पलटते हुए बोला, रो। इतना बोल वे रूही की तरफ पलट जाता है। वहीं रूही जैसे ही रुद्र की आवाज और उसके चेहरे को देखती है तो वे पूरी तरह से शॉक रह जाती है और एकटक रुद्र को देखने लगती है। वहीं रुद्र जब रूही का इस तरह का शॉक रिएक्शन देखता है तो एक डेविल स्माइल करते हुए रूही के करीब आ उसकी कमर को पकड़ खुद से चिपकाते हुए रूही के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, रू अगर तुम चाहती हो कि वे सारे अनाथ लोग बेसहारा यूं सड़क पर ना भटके और मैं उन्हें अनाथ आश्रम में रहने दूं, तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में खुशी खुशी मेरी बीवी बनकर रहना होगा। वहीं रूही जो शॉक रिएक्शन के साथ रुद्र को देख रही थी, रुद्र की बातें सुनकर और उसे अपने करीब देखकर वे होश में आती है और रुद्र से अपने आप को छुड़ा उससे दूर हो अपनी हकलाती आवाज में बोली, तुमने उस अनाथ आश्रम को खरीदा? तुम हमें वहां से निकालना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ उस घर में चलूं। रूही की बात सुनकर रुद्र वहीं लगे सोफे पर किसी राजा की तरह अपने एक पैर पर दूसरे पैर को रख बांटते हुए एक खतरनाक स्माइल के साथ बोला, माय इनोसेंट रू, तुम काफी ज्यादा समझदार हो गई हो। तुमने बिल्कुल सही कहा रू, सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे ये सब करना पड़ा, क्योंकि रू मैं तुम्हें प्यार से समझाते समझाते थक गया हूं। मुझे ये बात भी समझ में आ गई है कि मेरी रूह को प्यार की भाषा अच्छे से समझ में ही नहीं आती। इसीलिए रू तुम्हें जो भाषा समझ में आती है मैं उसी भाषा में तुम्हें समझा रहा हूं। रू अब डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें मेरे साथ रहकर उन अनाथ लोगों की मदद करनी है या उन्हें यूं सड़क पर बेसहारा छोड़ना है। रुद्र की बात सुनकर रूही गुस्से में बोली, मुझे आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। रही बात उन अनाथ लोगों की, तो ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। सब तुम्हारी तरह मतलबी नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं रहने के लिए जगह मिल ही जाएगी। रूही की बात सुनकर रुद्र गुस्से में अपनी सर्द आवाज में बोला, रू तुम इस मतलबी दुनिया को नहीं जानती। ये दुनिया कितनी मतलबी और खूंखार है इसका तुम्हें 1% का भी अंदाजा नहीं है। रुद्र की बात सुनकर रूही उसके कुछ भी नहीं कहती और वहां से जाने लगती है, जिसे देख रुद्र गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस लेता है। फिर वहीं रखे एक रिमोट के बटन को प्रेस करता है, जिसके वहां पर लगी एक बड़ी की टीवी स्टार्ट हो जाती है। वहीं रूही जो वहां से जा रही थी, टीवी से आ रही आवाजों को सुनकर उसके कदम तुरंत अपनी जगह पर रुक जाते हैं और वे पीछे मुड़ हैरानी से उस टीवी की तरफ देखने लगती है। उस टीवी में दिखा रहा था कि कुछ पुलिस वाले उन बूढ़े और बच्चे को मार रहे थे, साथ ही साथ अनाथ आश्रम की छोटी छोटी लड़कियों को अपनी गंदी नजरों से अजीब तरीके से देख रहे थे, जिसे देख रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे घर लाने और अपनी ईगो के चलते इस हद तक चले जाएंगे। रूही की बात सुनकर रुद्र अपनी डेविल स्माइल बरकरार रखते हुए रूही को देख बोला, रू मैं सच में इतना भी बुरा नहीं हूं कि मैं इन अनाथों के साथ ये सब करूं। मैंने तो बस इन पुलिस वालों से इन लोगों को अनाथ आश्रम के बाहर से हटाने के लिए कहा था। अब ये पुलिस वाले इन लोगों को इस तरह निकालेंगे मुझे क्या पता। लेकिन रू एक बात कहूं, अगर ये लोग अनाथ आश्रम के बाहर गए तो उनके साथ तो ये सब होना ही होना है, खासतर उन लड़कियों के साथ। क्योंकि रू तुम्हें नहीं पता, पर इस शहर में बहुत सारे जानवर हैं जो लड़कियों को नोचने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। रू क्या तुम चाहती हो कि इनके साथ ऐसा कुछ हो? तुम ही बताओ रू कि तुम इन्हें लेकर कहां ही जाओगी? अगर कहीं चली भी गई रू तो मैं उस जगह को भी खरीद लूंगा। इसके अच्छा यही है रू कि तुम मेरे पास अभी आ जाओ, क्योंकि तुम कहीं भी क्यों ना चली जाओ मैं तुम्हें वहां रहने ही नहीं दूंगा। और तुम्हारी वजह से इन अनाथ लोगों को कितना सफर करना पड़ेगा रू तुम ही बताओ। अब फैसला तुम्हारा है रू
कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हें मेरे साथ चलना है या इन अनाथ लोगों को यूं जीते जी मरते हुए देखना है। रुद्र की हर एक बात रूही के दिमाग पर गहरा असर डाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिशा अपनी ड्रेस को साफ करते वापस हॉल में आ चुकी थी, लेकिन हॉल में आ जब वे रूही को नहीं देखती है तो परेशान हो जाती है। फिर खुद से ही कहती है, कहीं ये रूही उस इंसान से अकेले ही तो मिलने नहीं ना चली गई। अगर ऐसा है तो मुझे जल्द के जल्द रूही के पास पहुंचना होगा, क्योंकि मेरी रूही बहुत ज्यादा मासूम है। पता नहीं वे इंसान कौन होगा और उसके क्या ही इरादे होंगे। इतना बोल वे इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे एक नौकरानी दिखती है और वे उसे देखकर बोली, सुनिए आपके बॉस का कमरा कहाँ पर है, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। दिशा की बात सुनकर वे नौकरानी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी मैडम मैं आपको सर का रूम बता देती हूँ, आप चली जाइए। उस नौकरानी की बात सुनकर दिशा भी अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिसे देख वे नौकरानी दिशा को बता देती है कि कैसे कैसे बॉस के रूम में जाना है।
वही दिशा नौकरानी की सारी बातों को अच्छे से समझ तुरंत उस रूम की तरफ चली जाती है जिस तरफ उस नौकरानी ने उसे जाने के लिए कहा था।